जब काबा की बात होती है तो इब्राहिम की बात जरूर आती है, इसीलिए फरमा वाइस बवान अली इब्राहिम। अब आप इन सारी आयतों को सुनते वक्त जरा मक्का और उसके गिर्दो नवाह में जाइए, फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा बात समझ आएगी। याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहिम के लिए खाना काबा की जगह तजवीज की थी इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करो और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क्याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। इब्राहिम को अल्लाह ने अपने घर की मेंटेनेंस और सफाई का काम दे दिया। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या काम मिला? ये काम मिला कि अल्लाह के रास्ते का काम मिला है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, असल ये कि आप किस नियत से करते हैं। और साथ ही कहा लोगों को हज के लिए इसने आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आए ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ इनके लिए रखे गए हैं और चंद मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको बख्शे और खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये वो सब मरहले हैं जो हज के दौरान होते हैं। ये था तामीर काबा का मकसद और जो कि अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये इस रब के नजदीक खुद इसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए मां सिवा इन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी, कहां बार बार बताई गई सूरह बकरा और खास तौर पर सूरह मायदा में और सूरह अलनाम में। बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो। दुआ कीजिए यकसू होंगे ना फिर मुकाम हनीफियत मिलेगा, फिर अल्लाह हमें भी इब्राहिम की तरह चुनेगा। और इसके साथ किसी को शरीक न बनाओ जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करे गोया वो आसमान से गिरा। अब या तो इसे परिंदे उचक कर ले जाएंगे या हवा इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिल के तकवा की बात है। दीन के रिचुअल्स क्या हैं? शायर जो थे ना रिचुअल्स हैं, इस्लाम के रिचुअल्स क्या हैं? आप सब जानते हैं मस्जिद, दाढ़ी, पर्दा, हिजाब और खाना काबा, मस्जिद नबवी, कुरान पाक, इन सब का एहतराम करना चाहिए। कभी मजाक में भी ऐसी चीजों का मजाक ना उड़ाएं वरना ये दिल से तकवा को उठाने की अलामत होगी। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक इन हदी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है, फिर इनके कुर्बान करने की जगह इसी कदीम घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और इसी के तुम मती फरमान बनो। और नबी बशारत दे दीजिए आजिजाना रविश इख्तियार करने वालों को। हाईलाइट करेंगे आप इस हिस्से को, वबशिरिल मुखबतीन। कौन होते हैं मुखबतीन? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जिनका हाल ये है कि जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो इनका दिल कांप जाता है। सोचिए मैं अल्लाह के जिक्र से कांपती हूं। जो मुसीबत भी इन पर आती है इस पर सब्र करते हैं, हू हा नहीं करते, रिएक्शन शो नहीं करते, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला हमें ये खूबियां दे, मुखबित बना दे। अंगारों के बुझने को मुखबित होना कहते हैं। बात आजजी नरमी आती है। आज जितनी मेरे अंदर नरमी आएगी उतनी बात समझ आएगी और जितना हम इसके लिए तड़पेंगे उतनी ही बात समझ आएगी। यहां आप देखिए कि मैं और आप अपने लिए अमल नोट करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, फिर एक पुकार लगा दी, वहां कोई भी नहीं था उस वक्त, लेकिन वो वहां अल्लाह की तौहीद की पुकारें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक गाकर दुनिया से चले गए। इब्राहिम नाकाम थे, उनको नहीं पता था कि आज लाखों जायरीन हरम हरम में जाकर हज और उमरा करते हैं। अब मैं जब भी जाती हूँ वहां, अल्लाह ले जाए जब भी, तो वहां जाके हजरत इब्राहिम के बारे में सोचती हूँ कि इब्राहिम जी जब आपने ये घर बनाया था तो क्या इधर कोई बंदा बसता था? ये तो अच्छी लोकेशन ही नहीं थी लोगों के हिसाब से कि यहाँ तो लोग आते ही नहीं, यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है। लेकिन आपने दूर अस प्लानिंग की, ऐसी लोकेशन ले ली जो सस्ती मिल रही थी, मुनासिब लगी, ले ली, अल्लाह खुद ले आएगा लोगों को। तड़प लेकर आती है। आज जितने लोग हजर उमरे के लिए जाते हैं ना और हम लोग जो ख्वाहिश रखते हैं ये इब्राहिम की वो दुआ है और उनके इखलास की वजह से। मेरा आपका काम क्या है? कोई सुने ना सुने हम एक काम शुरू करते ना। कोई आएगा तो आएगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप सोचिए ना हज एक कोर्स है, जब अनाउंस हुआ था तो कोई था ही नहीं वहां, किसी की ख्वाहिश नहीं थी। और आज हर साल कितनों की फाइलें रिजेक्ट होती हैं कि सॉरी आप इस साल हज पे नहीं जा सकते, तो फिर मैं और आप क्या करें? ये कहना छोड़ दें कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई मानता नहीं है। आप अल्लाह से दुआ मांगे, तौफीक मांगे, अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले। वो कहते हैं ना, कारखाने में तोती की आवाज कौन सुनेगा, ये तो मैं कोई नहीं पता तोती की को सुनता है कि नहीं, लेकिन ये मुझे यकीन है कि आप तड़प के अगर अल्लाह से कोई काम शुरू कराते हैं, अल्लाह ताला उसमें खैर जरूर ले आता है। इसलिए आपको मुझे जरूरी है अपनी बात के लिए, और जितना हम इस चीज के लिए कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला हमारे लिए रास्तों को आसान कर देगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीकों की बात की। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर किया ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो इसने इनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है। यहाँ कुर्बानी की बात हुई, आज के शोशे जो है ना, जो लोग बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में तनकीद और तारीफ के हाथ में बातें अपने लेते हैं, वो कहते हैं कुर्बानी ना करो जानवरों को। ओ हो, एनिमल राइट्स के ये बहुत खिलाफ है, बर्बेरिक और दिस एंड दैट और इंसानी सोज है। इतने एतराज हैं इस बात पे, और इंसानों को रोक दिया गोश्त खाने से। बच्चे नहीं खाते, कहते हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे, आपने मेरा पेट क्यों मार दिया, मैं तो इसको बकरा बना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। आप ना काटिए, होगा क्या आपको पता? पूरी दुनिया में जानवर मर जाएंगे। दो किस्म के जानवर हैं दुनिया में, एक जो ईटेबल है और एक जो नहीं है। जो ईटेबल है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बकरी गाय भैंस आप खुद देखते हैं। इसके बरक्स जो नहीं खाए जाते उनकी ग्रोथ ही इतनी नहीं, आपको डियर्स इतने नहीं देखेंगे दिखेंगे जितनी बकरियां दिखती हैं। तो अगर आपने उनको ना किया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर दूसरा एक और शोशा लोग छोड़ते हैं, भाई इन पैसों से सड़कें बना दो और हॉस्पिटल बना दो, क्या तुम इतना गोश्त और खून बहाते हो, दिस एंड दैट। तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में आज भी कितने लोग हैं जो सिर्फ ईद के मौके पे गोश्त खाते हैं? और क्या आप अपनी शादियों के पैसों से नहीं उस हॉस्पिटल बना सकते? आपको बनाने हैं हॉस्पिटल, आपको सड़कें बनानी है, आपके अपनी बच्ची की शादी आसान सादगी से करूंगी, उस पैसे से ये बात कर दो। फिर आप देखिए कि जितना खून इसका मट्टी में जाता है उतनी जरखेजी आती है, खाद बनती है। गोश्त जो आता है वो फ्रीजरों में भर भर कर ऐसे कहत सदा इलाकों में भेजा जाता है। तो ये एक सुन्नत तरीका, हम इससे क्यों रोकें? 2 दिन के मेकअप की जगह पे आप जाके किसी जगह सड़क बना दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 100 दफा बनाए। क्या इस्लामी रिचुअल्स पे बात है? याद रखिए, ये हमारे बच्चों को दीन से दूर करने की बात है। और मैं हमेशा वेस्टर्न मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों को एक एडवाइस करती हूँ जो आज से तकरीबन 2.5 महीने बाद आपके भी काम आएगी, और वो क्या कि अपने बच्चों के सामने कुर्बानी करें। मत पाकिस्तान सारे पैसे भेज दें, जी भेज दो, यहाँ बहुत महंगे, वहां कुर्बानी कर देते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं, जो आपने मैंने बचपन में बकरे कटते देखे हैं याद है कि नहीं? हम डरते छुपते, दिल अंदर से तक 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 कर रहा होता था, लेकिन जाके चुपके से, और छुरी चलती थी तो आंखें बंद कर लेते थे। तो वो याद है ना? और वो बकरा जो कुर्बान होता है, क्या वो हमें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां नहीं सिखाता? तो जितनी तेजी से इस्लामिक रिचुअल्स अब हमारे बच्चों के जहनों से वाइप आउट किए जा रहे हैं, उसमें एक ये भी चीज है। करें इधर, रोज गोश्त खाते हैं कि नहीं खाते? किसके घर रात को जो गोश्त पक रहा है वो पाकिस्तान से आया है? तो पाकिस्तान में कौन सा सस्ता, और इंडिया में कितना कुछ सस्ता है? सिर्फ ईद के मौके पे आप कहते हैं यहाँ बकरा लेंगे $300 का, बाहर पाकिस्तान भेजेंगे शायद 100 का आ जाएगा। तो क्या अल्लाह के नाम पे हम इस तरह की कंजूसियां करेंगे? काटिए, लेके जाए। यहाँ मुझे नहीं पता है अटलांटा में है कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में तो है, बुचर शॉप्स हैं, लोग जाते हैं और जाके वहां बकरे कटवाते लेते हैं अपनी पसंद का, और खाया भी करें। उस बकरे के गोश्त को खाते वक्त जो फीलिंग आती है, जो पहले टाइम गोश्त खाते हैं वो आज भी याद आती है कि ये बकरा थोड़ी देर पहले हमारे सामने जिंदा था, आज हमारे पेट में जा रहा है। तो ये नेचुरली करीब करने वाली बात है, इसलिए इन चीजों को लेकर चलिए और फिर इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए ले। फिर ये जो कुर्बानी करने के बातों में है कि जी उसको जानवर को हम अपने सामने देखते हैं, जी बहुत है तड़पते, अच्छा नहीं लगता। तो इस पे एक यूनिवर्सिटी में किसी ने रिसर्च की थी, हैनोवर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है मेरे सामने। डॉक्टर्स ने 2 जानवर लिए, एक के सर में इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो तकलीफ की शिद्दत को फील करते हैं। फिर उसने एक बकरे को इस्लामी तरीके से ज़िबा किया, थोड़ी सी रग काट के छोड़ दिया, और दूसरे को वो बोल्ट स्ट्रेनिंग के जरिए से पूरा काटा। तो उन्होंने बताया कि जिसको बोल्ट स्ट्रेनिंग के जरिए यानी जिसको झटका आज के दौर में आप कहते हैं उसे किया, तो वो इतनी ज्यादा तकलीफ से मरा कि जब उसको वो गोली लगी थी तो गोली से पहले वो खौफ की वजह से उस जानवर का दिल धड़कना बंद हुआ और वो पहले ही मर चुका था। इसके बरक्स जो वो इलेक्ट्रोड्स ने पेन की वेव्स फील की, उन्होंने बताया कि जिसको इस्लामिकली ज़िबा किया उसको बहुत मामूली किस्म की दर्द हुई। जिसने बनाया उसको पता है जानवर उसके आपके इतना प्यार करते हैं जानवरों से, इंसानों से कर ले, उस जात से कर ले, तो जैसे इसी चीज होती है इस तरह से वो दर्द को नोट किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखिए, इस्लामिक रिचुअल धन को जिंदा कीजिए। तो इस साल सब मिलके जाकर एक बड़े से फार्म में जाकर अपने बच्चों के साथ जाके जानवरों को काटिए, इंशाल्लाह इससे भी इस्लाम की खूबसूरती दिखेगी हम सबको। शर्मिंदा ना हो अपने दीन पे, हम उम्मते मुस्लिम है, हमें शर्मिंदा तो होना ही बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी के ऊँटों की बात की, ये तो एक और ही मंजर है। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायरिल्लाह में शामिल किया, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है, बस इनको खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के जानवर उनकी पीठे जमीन पर टिक जाएं, तो इसमें से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और इनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। तीन हिस्से हैं कुर्बानी के गोश्त के। पहले मसला क्या था, लोग सारा खुद ही रख लेते थे, गरीबों को नहीं देना चाहते। आज क्या मसला हो गया, खुद नहीं खाएंगे सब दूसरों को दे दें, हमारे घर कोई नहीं खाता। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब ईद वाले दिन भी लोगों के घर में पुराना कई दिन का रखा फ्रीजर का गोश्त या चिकन निकाल के बकता है, हैरत किया था। हमने जब देखा, यही देखा कि ईद से एक हफ्ता पहले गोश्त छोड़ देते थे पकाना, आज सब्जी पक रही है, दाल बन रही है, आज खिचड़ी बन रही है। क्यों? ईद पे गोश्त खाएंगे तो मजा आएगा, और खाने से पहले छोड़ा तो ही मजा आता है। आज तो ईद से एक दिन पहले फ्रिज गोश्त का भरा होता है, खाने पके होते हैं, दाबते हैं। तो कभी खाइए कभी छोड़िए, तो फिर क्या करें, गोश्त लेना कब छोड़ना है आप लोगों ने? जिलहज से पहले ही छोड़ते हैं, ठीक है? आप कहेंगे हमारे पास तो 6 माह का सामान तैयार है, अब हम क्या करें? तो बहरहाल ये है कि कभी होगा कभी नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फरमाया कि इनको भी खिलाओ जो नहीं खा सकते। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, ना इनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, मगर तुम्हारा तकवा उसको पहुंचता है। दुआ करें हमें तकवा मिल जाए। गोश्त हम खा जाते हैं, खून मट्टी में चला जाता है, अल्लाह को हमारे जज्बे पहुंचेंगे। इसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया ताकि इसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम इसकी बड़ाई बयान करो, और ए नबी बशारत दे दो नेक काम करने वालों को। क्या हाईलाइट कीजिएगा, बड़ी प्यारी आयत है, इन्नल्लाह युदाफियुनिल्लज़ीना आमनू, यकीनन अल्लाह दिफा करते हैं उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। ये है आपके लिए फिर एक मैसेज उम्मते मुस्लिमा के नाते से, डोंट वरी, डोंट बी स्केयर्ड, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। अल्लाह तुम्हें एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तुम्हारा हर नुकसान मैं पूरा करूंगा, तुम एक दफा मेरे रास्ते में निकलो। हम कहते हैं हम बड़े मजबूर हैं, तो याद रखिए जब तक मजबूर रहेंगे मदद नहीं आएगी, जब तक मसलहतें हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी हमें अल्लाह का साथ नहीं मिलेगा। हम टस से मस नहीं होते, अपनी रसूमात साइड बाय साइड चलती हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग चलता है, अल्लाह को फिर काम की मेरे जरूरत नहीं। जब अल्लाह की मदद का जज्बा दिल में उभरता है फिर अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। तो आज उम्मते मुस्लिमा पूरे ग्लोब के ऊपर इस आयत को ही लिख कर डाल दे कि जब सच्चा ईमान आएगा अल्लाह किसी मुसलमान को मरने नहीं देगा काफिर की गोली से। नबी सल्लम की 10 साल मदनी जिंदगी को देख लीजिए, उंगलियों पे गिने हुए वो 70 लोग जो मैदान जंग उहद में मारे गए, 70 रजी के वो लोग जो गजवा रजी के अंदर धोखे से उन्होंने जाके हुफाज को मार दिया, बदर के 10-12 लोग, 2-4 कुछ इस तरह से मिलते। यानी सारे फिगर्स आप जमा कर लेना नबी सल्लम की जंगों में मुसलमानों के नाते से, तो वो 200-300 से ज्यादा लोग नहीं मरे 10 सालों में। सॉरी, आज कितने मर रहे हैं? चले तब तो जंगों में जाके मरते थे, आज तो घरों में बैठे हुए। जब आपके अंदर ईमान होता है अल्लाह आपका दिफा करता है, फिर अल्लाह आपकी साइड लेता है, फिर अल्लाह दूसरों के दिलों में आपका रोब डाल देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये सारी खूबियां अता कर दे। इजाजत दे दी गई है इन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मजलूम है और अल्लाह यकीनन इनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए से दूर न करता तो खानकाहें और गिरजे और माबद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मिसमार कर दी जाती। अल्लाह जरूर इनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। हाईलाइट करिएगा, ये हमारे पास बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी में कहीं लिखा हुआ भी है, किसी ने एक बना के दी थी। ये है आपका मेरा स्लोगन, इसको साथियों ने जो वॉलंटियर्स करते हैं ना लंदन में गालिबन, ये कहा मुझे याद नहीं आ रहा, ये कोटेशन पूरी लिख के लगाई हुई, वाला यंसुरन्नल्लाहुमय्यंसुरु। 3 दफा जरा इसको गौर से पढ़े, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है? नहीं, अल्लाह के दीन की मदद, इस्लाम की मदद, दुआ कीजिए अल्लाह हमें इसमें डाल दे। अब हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो कैसी करेंगे, जो हमारी औकात है जितना कर सके। तो जब अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हमारे काम कैसे होंगे। इसलिए आप अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं ना, तो आपके काम ऐसे होने लगते हैं कि जैसे उनके भी नहीं होते जो सारा सारा दिन मेहनत करके अपने आप को ख्वार कर लेते हैं, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह के लिए कर रहा होता है। और अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब एकदम जंगों का जिक्र शुरू हुआ, तो इसको समझ लीजिए हज का जिक्र हो रहा है। और हज होता है खाना काबा में। जिस दौर में ये सूरतें नाजिल हो रही हैं, तो मक्का वालों ने मुसलमानों पे इतने टॉर्चर किया, उस जगह को कैद कर दिया, कुछ को हिजरत पे मजबूर कर दिया। तो यहाँ बता दिया कि वहां जाके इबादत करने के लिए किताल लाजमी है। तभी तो सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी ने जब मक्का में जाकर लोगों को जमा किया, तो उसके बाद ही मक्का फतह हुआ। तो कभी कभी फिर किताल लाजिम हो जाता है अल्लाह का दीन नाफिज करने के लिए। अब आगे इसी तरह की बात, कि जब किसी को अल्लाह अपनी जमीन के कुछ टुकड़े दे दे जहां वो अल्लाह का दीन नाफिज करना चाहता है, तो क्या करे। अल्लज़ीने मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात। ये वो लोग हैं जिनको अगर हम जमीन में इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, जक़ात देंगे और नेकी का हुक्म करेंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का इंजाम कार अल्लाह के हाथ में। या हम दुआ तो कम अज कम करते हैं कि अल्लाह आज भी ऐसे लोग पैदा कर, एक दफा उनको जमीन के टुकड़े मिल जाएं तो फिर वो नमाजें कायम करें और जक़ात दें और ये सारी दीन की अमली चीजें वहां लागू कर दें। वही युकज़्ज़िबू का फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वअदुम वसमूद। ए नबी, अगर वो यानी कुफार तुमको छुटलाते हैं, तो इनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और अहले मदियन भी छुटला चुके हैं और मूसा भी छुटलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकरी ने हक को मैंने पहले मोहलत दी फिर पकड़ लिया, अब देख लो मेरी पकड़ कैसी थी। कितनी ही खताकार बस्तियां जिनको हमने तबाह किया और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते। हाईलाइट कीजिए इसको। فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها। दुआ करें अल्लाह हमें समझने वाला दिल दे दे। यहां से पता चलता है कि समझने और सोचने का काम दिमाग नहीं, दिल करता है, और दिल चाहने लगे तो दिमाग खुद ब खुद उसकी मदद करना शुरू हो जाता है। और सुनने वाले कान, हकीकत यह कि आंखें अंधी नहीं होती मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिलों के अंधा होने से बचा दे। कुरान से दूरी दिल की मौत है। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं, अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर तेरे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर होता है। वाकई ये मिन करियतिन अमली तुलहा। कितनी ही बस्तियां जो जालिम थी फिर मैंने पहले तो इनको मोहलत दी फिर पकड़ लिया। नोट करें, वाहिद मुतकल्लिम अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत ले रहे हैं। मैंने इनको मोहलत दी फिर मैंने इनको पकड़ लिया और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है।